नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों, शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमरीका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कूरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ रही है। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतूप जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू-1 टैंकर का अपहरण शामिल है। और खेलों में हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं दिल्ली में आज हल्की वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।